कैंटीन से पहुंचा और मेरे ख्याल में इसी मुनासिबत से प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, दोस्त यहाँ अपने वक्त आ चुके थे। अगर मेरी वजह से प्रोग्राम के शुरू होने में दाखिल हुई तो मैं उसमें आप सबसे मासूम चाहता हूँ। दूसरी बात, जो दोस्त अहबाब हमारे पीछे डरे डरे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ लें, जब आ ही गए हैं तो आगे आ जाइए ताकि ज़रा नज़दीक से आपका मुशाहिदा भी हो सके और पता चल सके सो कौन रहा है चार कौन रहा है। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे कहा कि नौजवानों की महफिल है तो नौजवानों की उसमें ज़रा आवाज़ होनी चाहिए, तो नौजवानी में जो है वो तकिया फकत खुदा पे होना चाहिए, लिहाजा दीवार के साथ तकिया लगा के बीच में आ जाए। दुरूद भेजो अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ इरफान भाई की इजाजत के साथ, चूंकि इरफान भाई उन सीनियर्स में से हैं कि जब हम इसी तरह आपकी तरह यहाँ पे बैठा करते थे तो इरफान भाई उस वक्त भी ऐसी ही जगह पे बैठा करते थे या डाइस पे होते थे और हम लोगों की रहनुमाई करते थे। हमने बहुत सी चीज़ों को इरफान भाई से जैसे सीनियर दोस्तों से सीखा है, इसलिए अदब का तकाजा ये है कि इरफान भाई से ही शुरू होनी चाहिए बात, क्योंकि मौजू मुझे शायद इस रंग का दिया गया है कि मेरा मौजू है इनकलाब से पहले की कुछ बातें और इरफान भाई को जो मुझे मालूम हुआ है मौजू है इनकलाब के बाद और इनकलाब के दरमियान की कुछ चीज़ों का जिक्र इन्होंने करना है। तरतीब के एतबार से पहले मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए इनकी इजाज़त और मौजू के साथ। देखिए, इनकलाब इस्लामी की तारीख को अगर तकसीम किया जाएगा तो काफ़ी हिस्सों में हमें तकसीम करना पड़ेगा। इनकलाब की और इनकलाब से पहले खुद ईरान की, चूँकि जिस ज़मीन पर इनकलाब रूनुमा होता है खुद उस ज़मीन की कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें शायद पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस हवाले से बात की जाएगी तो हमें पहले इससे पहले कि हम इनकलाब इस्लाम की तारीख को समझें हमें थोड़ा सा ईरान की तारीख को भी समझना होगा, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं हुआ करती, मकसद 9 बजे, इसलिए मैं उस बहस को नहीं लिख के आपके सामने करूँगा। और ना ही पूरा दौर है कि किस तरह सफवियों के दौर तक हुकूमत पहुँची, उससे पहले वाला कौन सा दौर था, उससे पहले कौन सा दौर था, ये पूरी तारीख है ईरान की। आज सासानियों से सिलसिला शुरू होता है और फिर वो मुख्तलिफ नस्लों तक आगे बढ़ता रहता है। इन तमाम अदवार के अंदर जो एक कॉमन सी चीज़ है वो ये नज़र आती है कि ईरानी कौम के अंदर थोड़ा सा अपनी कौम की नस्बत, अपने इलाके की नस्बत, उसको हमारे यहाँ कहा जाता है तअस्सुब, बाद लोगों पर उसको काम नाम दिया जाता है नेशनलिज्म का, कौमियत, कौमी जज्बा, कौम परस्ती, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके साथ साथ कुछ दौर एक ऐसा आया कि जिसके अंदर इस कौम परस्ती के साथ या नेशनलिज्म के साथ या हुब्बुल वतनी उसका अगर नाम रखा जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और आगे शामिल होती चली गई। उलमा ने अपनी तहरीकों के जरिए से, अपनी अफकार के जरिए से उस हुब्बुल वतनी के साथ साथ इस्लामी सोच को भी डेवलप किया। ये नाम की मुफसिल सी तारीख है। हम चूँकि इंकलाब इस्लामी की तारीख पर बात करेंगे उसमें भी ज़्यादातर फोकस हमारा इमाम खुमैनी की यकीनन हयात से मुतालिक होगा, क्योंकि हम इमाम खुमैनी के नाम से इंकलाब को पहचानते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि रहबर मुअज़्ज़म ने भी अपने गुफ्तगू में कहा है कि ये इंकलाब इमाम खुमैनी के नाम के बगैर पहचाना नहीं जा सकता। जहाँ कहीं भी इंकलाब इस्लामी की बात आएगी यकीनी तौर पर इमाम खुमैनी का नाम उसके साथ साथ आएगा। इमाम खुमैनी का जो दौर आगाज होता है वो आपको मालूम है 1901 या 1902 उनकी तारीख विलादत बयान की जाती है। सन 1902 में या सन 1901 में इमाम खुमैनी की विलादत हुई। उससे पहले भी कुछ चीज़ें इमाम की विलादत से पहले, इमाम की विलादत जब इमाम का बचपन का दौर था, इमाम की तफूलियत का दौर था, उस वक्त भी कुछ ना कुछ चीज़ें ईरान में चल रही थी। इमाम ने अपने बचपने में जंग अजीम भी देखी है, दुनिया की जो वर्ल्ड वॉर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा है इमाम ने, जिसका खुद उन्होंने जिक्र किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इमाम ने देखा है और उन्होंने बयान किया कि हम कैसे कैसे इस वर्ल्ड वॉर के अंदर शरीक रहे अपनी गुफ्तगू के अंदर, जहाँ इमाम की सवानहयात लिखी है। लेकिन मैं बहुत तेज़ी के साथ चल रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको बयान करना चाह रहा हूँ। इमाम खुमैनी की बाकायदा तहरीक का आगाज, इमाम खुमैनी का बाकायदा क़यादत संभालने वाला मरहला 1963 में आता है, लेकिन 1963 से पहले कुछ चीज़ों को आपके सामने बयान करता हूँ और जहाँ से आगाज कर रहा हूँ वो है 1921 का दौर। 1921 का दौर क्यों शुरू किया, इसलिए कि 1921 का दौर वो है कि जब इमाम खुमैनी ने इंकलाब किया तो एक शाह को ईरान से भगाया था जिसका क्या नाम था, रजा शाह। उससे पहले जो उसका बाप था जिसका नाम था रजा खान, रजा खान ने जो हुकूमत संभाली थी बगावत करके और अपने दौर की हुकूमत का खात्मा करके, चूँकि फौजी शख्स था और इसको इस हुकूमत तक पहुँचाने में अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, 1921 में रजा खान के हाथों में हुकूमत आई, यहाँ से हम शुरू करते हैं और उसके बाद इमाम खमेनी के इनकलाब तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। 1921 में रजा खान ने फौजी बगावत की, अंग्रेजों ने इसकी मदद की तारीख इसनाद मिलती है उसके मुताबिक, और उसके बाद रजा खान ने हुकूमत को संभाल लिया। इसकी हुकूमत का जो दौरान था वो तकरीबन 20 साल पर मुश्तमिल है, 1921 से लेकर 1941 तक तकरीबन रजा खान की हुकूमत रही। अपने इस 20 साल दौर में इसने बर्बरियत की आदत तरीन मिसालें कायम की हैं, जुल्म जोर पर अपने निज़ाम को कायम किया। इसकी हुकूमत की कुछ बुनियादी खसूसियात कह लें या इसकी फिलासफी कह लें या उसका नज़रिया कह लें, तीन चीज़ों को ईरानी किताबों में जो तारीख के बारे में लिखी गई हैं बयान किया गया है कि रजा खान किस तरह का आदमी था और उसकी हुकूमत के बुनियादी उसूल क्या थे। पहला, तीन उसूल हैं। पहला उसूल उसका यह था कि पुरतशद्दुद फौजी और पुलिस की हुकूमत कायम करना, रोब दहशत के जरिए से हुकूमत करना, रोब दहशत के जरिए से लोगों को सरकूफ करना, आज़ादी राय की कोई गुंजाइश नहीं बनती, आज़ादी राय की कोई इख्तियार किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि फौजी हुकूमत है, पुलिस की हुकूमत है, जो ऑर्डर आ गया आपने उस पर अमल करना है। दूसरा इसका उसूल, उसकी हुकूमत का या बुनियाद या रुकन कह लीजिए उसको, मजहब और मजहबी रहनुमाओं का मुकाबला करना, हुकूमत करनी है रोब दहशत के साथ, उस रोब दहशत की हुकूमत के साथ साथ मजहब को आहिस्ता आहिस्ता किनारे पे करना है, जो मजहबी रूह पाई जाती है उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। और तीसरी चीज जो इसकी हुकूमत का बुनियाद फराम करती है वो है इसकी मगरब परस्ती, गर्ब जदगी जिसको कहा जाता है फारसी के अंदर, यानी इसकी सोच मगरब की तरफ माइल थी। इस रजा शाह ने अपने 21 साल दौर के अंदर इन चीजों को बहुत ज्यादा अमली तौर पर अमली जामा पहनाया। बयान किया जाता है तारीखों में, उसकी तारीख ईरान की, तकरीबन ईरान की जो जरई जमीन थी उसका आधा फीसद हिस्सा, आधी जमीन रजा खान ने अपने नाम कर दी थी बाकायदा कानून में तरामीम करवाकर। कैसे हुआ? किसान काम कर रहा है, जमींदार की जमीन है, चूंकि पहले अर्ज हो चुका कि ये इसका जो तरीका वारदात था वो था ही रोब दहशत का, फौजी तरीकेकार था, पुलिस का तरीकेकार था, नतीजे में जमीनों को बाकायदा अपने नाम करवाया गया, जिस किसी ने खड़े होने की कोशिश की गई उसको या तो दबा दिया गया या मार दिया गया। उसके बाद आधी ईरान की जो जरी जमीन थी रजा शाह रजा खान ने अपने और अपने खानदान के नाम कर ली थी बाकायदा, उसकी जो सनद आप कहते हैं उस सनद के जरिए से वो जमीनें रजा खान के नाम हो चुकी थी। अब लोग क्या करते थे, जमीनों पे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ पे होता है वडेरा शाही का निजाम बाकी है फाइन है, यहाँ पे भी जमीन वडेरे की होती है, काम करने वाले किसान होते हैं जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं कम्बी कुमार कहते हैं, एक मेहनत करने वाले को कम्बी कुमार, यानी उसका कोई हैसियत नहीं है, वो भी कम्बी है काम करने वाला, बस काम करने वाले किस पे काम करेगा, वो कमाए काम करेगा, जो भी फायदा जाएगा वडेरे के। इसी तरह तकरीबन रजा खान ने अपने जमाने में ये काम किया था। उसके बाद जो ये बात होती कि पुलिस की हुकूमत दहशतगर्दी की हुकूमत इसकी थी, साथ साथ जो मजहबी मामलात का मुखालिफत किया करता था उसकी एक आला तरीन मिसाल या बर्दस्ता मिसाल उसको कहना चाहिए, आपने सुना होगा कश्फ हिजाब के नाम से एक कानून इसकी हुकूमत में आया। कश्फ हिजाब क्या चीज है? कश्फ का मतलब उतार लेने का है, हटा देने का है, हिजाब पड़ना। इसकी हुकूमत में बाकायदा ये कानूनी तौर पर हुक्म आया कि किसी भी खातून को ये इख्तियार नहीं है, आज़ादी नहीं है कि वो जब घर से बाहर निकले तो वो हिजाब पहन कर आए, किसी भी खातून को इजाज़त नहीं है। इसकी तरफ से ये हुक्मनामा आया है इसके दौरे हुकूमत में, जो मैंने बताया 1921 से 1941 तक का इसका दौरे हुकूमत है, उसके दौरान ये वाक़ हुआ है कश्फ हिजाब का। बाकायदा अनाउंस हुआ कि अब आज के बाद कोई भी खातून रोड पे हिजाब के साथ नहीं आ सकेगी। खवातीन ने इस बात की पाबंदी नहीं की, जिन खवातीन ने नहीं पाबंदी की उनके सरों से रोडों पे चादरें छीनी गई, बुरके छीने गए। उस जमाने में जो असला होता था उसके आगे जो है वो संगीन शायद कहलाती है, जो छुरी होती है वो लगी होती थी, उससे लोगों की खवातीन के सरों से पर्दे उतारे गए, जबरदस्ती उतारे गए। नतीजे में यह हुआ कि दीनदार खवातीन ने हत्ता घरों से निकलना कम कर दिया। अब मैं आपको इसी से मुतसिल एक वाकया है उसको बयान करता हूँ आपके सामने कि एक खातून के बारे में एक आरिफ ने बयान किया है, एक खातून के जनाजे में इमाम से तशरीफ लाए थे। कैसे तशरीफ लाए थे? ये वो खातून है कि जिसने जब से ये ऐलान हुआ था कि आज के बाद कोई भी खातून बाहिजाब नहीं आएगी रोड पर और जो आएगी उसका हिजाब उतार लिया जाएगा, इस खातून ने उस ऐलान के बाद से 7 साल तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा था, इस वजह से कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूं और हुकूमती कारिंदे आए और मेरे सर से हिजाब को छीन लें, मेरा सर बरहना हो जाए और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता। हालांकि इसका इख्तियार नहीं था, इसमें इसका इख्तियार बाहर ना जाना था, उसने वो इख्तियार इस्तेमाल किया बकौल उस आरिफ के इसके जनाजे में हम तशरीफ ले गया। रजा खान का जमाना एक ऐसा जमाना था, उसी जमाने में फिर उसके बाद दौर चलता गया, उसका जुल्म सितम जारी रहा, उसकी हुकूमत बाकी रही। अपने दौरे हुकूमत में ही उसने अपने बेटे को भी आहिस्ता आहिस्ता जानशीनी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि दूसरी जंग अजीम रोनुमा हुई, अगर डिस्टर्ब भी हो रहा तो शायद आवाज आई रही आप लोगों को। दूसरी जंग अजीम में रूसियों का ईरान पे जो कब्जा था वो खत्म हुआ। जब रूसियों का कब्जा खत्म हुआ तो उसके बाद जो नई हुकूमत आई बर्तानिया की हुकूमत, उसने रजा खान की जगह उसके बेटे रजा शाह को हुकूमत दी और रजा खान को मुआयदा करके मुल्क बदर कर दिया गया, चूंकि लोगों में एक मुखालिफत पाई जाती थी। और बाज मौरखीन ने इस क्वेश्चन से लिखा कि चूंकि रजा खान का जो लगाव था या झुकाव था वो रशिया की तरफ था, चूंकि उससे पहले वहां रशिया की हुकूमत रही, रूसियों की हुकूमत रही, इसकी वजह से जब आने वाली दूसरी हुकूमत थी उन्हें ये गुमान था कि ऐसा ना हो कि ये रजा खान अपनी उसी रविश पे बाकी रहे और अंदर अंदर हमारे खिलाफ कोई साजिश करता रहे। लिहाजा इसी नतीजे में उन्होंने ये तय किया कि हम रजा खान को इनसे बाहर निकालते हैं, उसके बेटे को कि जो जायरन वेस्ट में पला बड़ा था उसको कहा कि हम उसको हुकूमत देंगे, वायदे किए गए और उसके तहत रजा खान की हुकूमत को खत्म करके रजा शाह को 1941 में हुकूमत दी गई। ये वो रजा शाह है कि जब इमाम हुमैनी ने इंकलाब लेकर आए तो ये रजा शाह ईरान से भागा। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि 1941 में ये अगर बादशाह बना ईरान का तो 1977 में जाके ईरान से भागा तो कितने साल की इसकी हुकूमत हो गई, तकरीबन 35-36 साल इसकी हुकूमत बाकी रही। अब जब रजा खान चला गया यहां से इमाम हुमैनी ने अपनी तहरीक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना शुरू किया। 1943 में इमाम हुमैनी ने कशफुल असरार नाम की किताब लिखी। इसको बयान करने वाले जो इमाम हुमैनी की सवानियत बयान करते हैं मरतब करते हैं, उन्होंने बयान किया कि इमाम हुमैनी का अगर कहा जाए तो बाकायदा सियासी पहला कदम अगर जी किताब है कशफुल असरार, जिसके अंदर क्या चीज बयान की गई है, असरार में से पर्दे हटाए गए, बहुत सी चीजों को इमाम ने उसमें लिखा है। लेकिन इसी किताब में इमाम खुमैनी ने हुकूमत इस्लामी के बारे में गुफ्तगू की। इसी किताब के अंदर इमाम खुमैनी ने वली फकी और उसकी हुकूमत उसके ज़ेर साया कायम होने वाली हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की, इसलिए इसको मौरखीन ने लिखा कि इमाम खुमैनी का पहला सियासी मुसव्वदा कह लिया, जिसमें इमाम खुमैनी ने बयान किया कि कोई भी निज़ाम हुकूमत इंसान को राह रास्त पर नहीं ला सकता, इंसान की फलाह का रास्ता हमवार नहीं कर सकता और इंसानों के ऊपर पसंद खुदावंद आलम जो कि वली और सरपरस्त है वो पूरी एक बहस है वली फकी की जिसको आप इंशाल्लाह सुनते रहते होंगे। इस किताब के अंदर इमाम ने हकीकत में हुकूमत इस्लामी के खतोखाल को वाज़ह किया और शहंशाह 20 साला शहंशाहियत के मसाइल को भी बेनकाब किया इस किताब के अंदर। यहां से आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो इमाम हुमैनी की जानिब आना शुरू हुई, लेकिन चूंकि बड़े मराजे मौजूद थे मखसूसन वो दौर आयतुल्लाह हाइदी और आयतुल्लाह उज़्मा हुसैन बुरज़दी का, इस वजह से भी चूंकि इमाम खुमैनी इंतहाई मुअद्दब तालिबे इल्म भी थे और मर्ज़ा भी थे मुज्तहिद भी थे, इंतहाई तवाज़ो रखने वाले एक शख्सियत थे इमाम खुमैनी की, लिहाजा उन्होंने इन मराजे की मौजूदगी में अपने आप को ज्यादा पब्लिक में लाने से गुरेज किया। लोग रुजू करते थे इमाम हुमैनी उनको इर्जा दिया करते थे बुज़ुर्दी और दूसरे मराजे की तरफ। उसके बाद ऐसा ऐसा ये हुआ कि जब रजा शाह का दौर आया तो इसने 1957 में फिर चूंकि शहंशाहियत का निजाम था तो 1952 में कुछ उलमा ने और कुछ सियासतदारों ने मिलकर एक तहरीक चलाई। हुआ यह था कि जो कुछ भी था वो शाह का हुआ करता था। मैंने अर्ज किया जैसे रजा खान ने आधी जरई जमीन अपने नाम कर ली थी, बाकायदा सनद बना ली थी अपने नाम, इसी तरह हर चीज खानदान के लिए वक्फ हो गई थी। ईरान आपको मालूम है कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, बहुत ज्यादा ईरान की जो इकतसाद का दारोमदार है वो ऑयल के ऊपर उस वक्त भी था और आज भी है। लिहाजा उस जमाने में ये हुआ कि ये जो ऑयल था इसको भी शहनशाह ने अपने खानदान में रखा और रखने की कोशिश की, या वो चंद खानदान थे कि जो ईरान पे हुकूमत कर रहे थे। यहाँ उलमा ने जिसमें आयतुल्लाह काशानी का नाम सारे फहरिस्त आता है और कुछ सियासतदानों ने जिनमें मुसद्दिक का नाम सामने आता है इन लोगों ने मिलकर एक तहरीक चलाई, उस तहरीक को जो है वो कहा जाता है कि ईरान में कहा जाता है तेल को कौमी आने की तहरीक, यानी तेल को कौमी हिस्सा बनाया जाए, तेल को बजाय इसके कि चंद खानदानों में तकसीम किया जाए उसकी दौलत को, बल्कि तेल तमाम मुल्क की और वहां के रहने वालों की वो खुदा ने नियमत अदा की है, लिहाजा उस तेल पर हर इंसान का हक है, हर ईरानी का हक है। तहरीक चली, दबाने की कोशिश हुई, लेकिन बहरहाल ये तहरीक अपने नतीजे तक पहुंची और उसके बाद ये कानून लागू हुआ बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए से कि तेल को जो है वो फकत शाह का खानदान अपने इख्तियार में रखेगा। इस बात का कानून बनाया गया कि तेल कौमी विरसा है और इस तेल की दरामद से हर शख्स को फायदा पहुंचाया जाएगा। यहां तक की कामयाबी हासिल हुई, लेकिन इसी तहरीक को आगे जाके एक मुसीबत का सामना करना पड़ा और वही मुसीबत आई कि जब अब तेल को कौमी आने का मरहला तय हो गया, इख्तलाफ शुरू हुआ उलमा के जो उस तहरीक के अंदर शामिल थे, अब्दुल्ला काशानी और दीगर सियासतदान जैसे मुसद्दक का मैंने नाम लिया, इन लोगों के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हुआ और इख्तलाफ इस चीज पर पैदा हुआ कि तेल निकाला जा रहा है, इसकी निकालने की इजाजत, इसको इस मुल्क से बाहर ले जाने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आयतुल्लाह काशानी और दीगर जो अपराध थे उनके साथ उन्होंने इस चीज की मुखालिफत की, उन्होंने कहा कि बात वही है कि आप शाहिनशाही से एक चीज को लेकर दोबारा इस्तेमार के हाथ में दे रहे हैं, साम्राज्य के हाथ में दे रहे हैं, आपके कौम को कुछ नहीं मिलेगा, करना भी ये चाहिए कि हम यहीं पे ऑयल रिफाइनरीज लगाएं, यहीं पे अपने मुल्क को तरक्की दें और इस तेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचे। मुसद्दक और उसकी जो टीम थी उन्होंने इस चीज से एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तेल चुने हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लिहाजा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस तेल को या अमेरिकन कंपनियों को इजाजत देते हैं या बरतानवी कंपनियों को इजाजत देते हैं कि वो आए और आने के बाद यहाँ से तेल निकाल कर लेकर जाएं और उसका कुछ जो भी सिलसिला है वो ईरान को मिलेगा। मैं आपके सामने ये तारीख बयान कर रहा हूँ, इस वजह से बयान कर रहा हूँ कि आपके जहनों में ये रहे कि इमाम खमेनी जो इनकलाब किया है वो एकदम से नहीं हुआ है, इमाम खमेनी के इनकलाब के पीछे एक बड़ी तारीख है और इमाम खमेनी के इनकलाब को अगर ये समझा जाता है कि महज एक यानी मजहबी इनकलाब है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता इमाम ने अपनी चीज को वाज़ह किया था कि मजहब और सियासत जुदा नहीं है, मकतब अहले बैत में जिस सियासत को जुदा करना चाहिए वो सियासत उमवी है, जो सियासत मजहब का हिस्सा है वो सियासत अलवी है, अलवी सियासत के तहत। लिहाजा इमाम खुमैनी इन तमाम चीजों में शामिल रहे, जहां उलमा आगे मौजूद थे इमाम खुमैनी अपने आप को पीछे रखा करते थे, लेकिन इन चीजों के साथ साथ आगे बढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि 1952 में ये इंकलाब, ये तहरीक कामयाब हो गई थी, मगर उसके बाद इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1993 में मुखालिफिन को फौजी बगावत से दोबारा कुचल दिया। उसके बाद 1961 का दौर आता है, 1961 में मरहूम आयतुल्लाह बुरुजर्दी की रहलत हो जाती है। अब जब आयतुल्लाह उस्मा बुरुजर्दी की रहलत हो जाती है तो अब ईरान के अंदर बज़ाहिर कुछ और इतनी मजबूत शख्सियत लोगों को नजर नहीं आती, लोग पहले से इमाम की तरफ रुजू करना चाहते थे, इमाम खुमैनी आयतुल्लाह बुरुजर्दी और दीगर बराजे की मौजूदगी में आगे नहीं आना चाहते थे। हालांकि इमाम खुमैनी ने आयतुल्लाह बुरुजर्दी की रहलत से 5 या 6 साल पहले जो किताब है क़ुरबतुल वुस्ता, उसके ऊपर उन्होंने हाशिया लिखा था। आयतुल्लाह बुरुजर्दी की किताब थी तरीका होता है कि इश्तेहाद का अपना और दीगर कुछ किताबें होती हैं फिर भी इसके बाहर हाशिए लिखे थे, उनकी वजाहतें लिख चुके थे, यानी इनका इज्तिहाद साबित था और बहुत पहले से साबित था, लेकिन आप उसी एहतराम में आगे नहीं बढ़ते थे। 1961 में आयतुल्लाह बुरुजर्दी की रहलत हुई, यहां पे इमाम खुमैनी की मर्जियत अब आहिस्ता आहिस्ता मतरा होना शुरू हुई और ये वो दौर है कि जहां पर इमाम खुमैनी के शागिर्दों ने इस बात को महसूस किया कि अब हमारे पास इमाम खुमैनी से ज्यादा मजबूत कोई और शख्सियत नहीं है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उनके शागिर्दों ने, जिसमें शहीद मुतहरी शामिल हैं, शहीद पेशी शामिल हैं, आयतुल्लाह मुफत्ते शामिल हैं और दीगर बुजुर्ग हस्तियां इसके अंदर शामिल हैं, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इमाम खुमैनी के बारे में लोगों को आगाही देना शुरू की, इमाम के पैगाम को लोगों के दरमियान लाना शुरू किया। 1962 में यह हुआ कि जहां से उसके बाद इमाम खुमैनी एकदम से बहुत खुल के सामने आए, 1962 यानी 1962 में उस वक्त का जो वजीर आजम था अमीर असदुल्ला, उसकी कैबिनेट ने एक मंजूरी दी और मंजूरी इस चीज की दी कि ईरान के अंदर जो इंतखाबात होंगे, पहले शर्त थी कि जो भी इंतखाबात होंगे उस इंतखाबात में मुसलमान कैंडिडेट शिरकत करेगा और हलफ जो है वो कुरान करीम पढ़ लिया जाएगा, यह हर मुल्क का इस्लामी मुल्क का कानून हुआ करता है। अमीन असदुल्ला जो वजीर आजम था उसने 1965 में आके पार्लियामेंट से ये कानून मंजूर करवाया, पास करवाया कि हर शख्स जो भी ईरानी है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। एक दूसरी शर्त जो कुरान से हलफ लेने की शर्त है, इस शर्त को भी खत्म करवा दिया गया। कहा कि किसी भी आसमानी किताब को या किसी भी मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखकर उस उम्मीदवार से, उस कामयाब होने वाले शख्स से हलफ लिया जा सकता है। इन कुरान करीम को अमली तौर पर खत्म किया। इस चीज के पीछे जो चीज छुपी हुई थी वो बेहाइयत का रास्ता हमवार करना था। मालूम है आपको कि अंग्रेज ने जो साजिश की है उसके नतीजे में इलाकों को तकसीम किया, और बड़े सगीर के अंदर बयान किया जाता है या मसलन और दीगर इलाकों के अंदर वहाबियत को उसने परवान चढ़ाया, और ईरान और उससे मुतालिक इलाकों के अंदर उसने बेहाइयत को परवान चढ़ाया। दोनों की पैदाइश तकरीबन कमोबेश एक साथ साथ की है। बेहाइयत का रास्ता हमवार करने के लिए मौरखीन ने बयान किया, ईरानी मौरखीन ने, कि अमीर रसूलुल्लाह ने ये चाल चली और पार्लियामेंट से इस कानून को उसने पास करवा लिया। मुसलमान होने की शर्त खत्म कर दी, जो भी ईरानी है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, और दूसरा ये कि जब भी मुंतखब होकर कोई आएगा तो कुरान से हलफ लेने की कोई शर्त नहीं है, किसी भी मुकद्दस किताब को सामने रखकर उससे हलफ लिया जा सकता है। इस चीज के खिलाफ इमाम खुमैनी ने बहुत ज्यादा खुल के काम किया। ये वो चीज थी कि जहां से इमाम खुमैनी बिल्कुल खुल के मैदान में आए। इमाम खुमैनी ने इसके बारे में तकारीर का आगाज किया। शुरू शुरू में लोग डरे, शुरू शुरू में लोग पीछे हटे, उलमा ने एहतियात का रास्ता अख्तियार किया। बाद लोगों ने कहा कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, शाह के कानों पर चू नहीं रेंगेगी, उसका जो है वो अली अफ्रीका है, इसराइल है, सब कुछ है। इमाम खुमैनी ने अपना काम किया, चूंकि इमाम खुमैनी का एक अपना हदफ था जिसको उन्होंने बारहा अपनी हयात में बयान किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम जो है वो बैनों में हदफ बयान करते हैं, उन्होंने बयान किया मशहूर जुमला है, सबने सुना हुआ है कि मां मुकल्लफ पे वजीफे ही ना बे नतीजे, हमारी जिम्मेदारी अपने वजीफे की अदायगी है, नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, ना हम उसके मुंतजर हैं कि नतीजा हमारे मुताबिक आता है कि नहीं आता, हमारा काम अपनी जिम्मेदारी की अदायगी है। इसी तरह एक मरतबा शहीद बिश्ती के बारे में बयान किया जाता है, शहीद बिश्ती जब इंकलाब आ चुका था तो इंतहाई जिम्मेदारियों का बोझ शहीद बिश्ती के कांधों पर था। उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये थी कि फलस्तीनियों की मदद करनी है, लेकिन इंकलाब नया नया आया था लिहाजा खुल के मदद नहीं हुआ करती थी। शहीद बिश्ती फलस्तीनियों की मदद किया करते थे, और उस जाहिर जब मदद करते थे तो बहुत से माली मसाइल भी इसके अंदर आ जाया करते थे। बहुत से लोग अंदर थे मुनाफिक थे, बहुत से लोग थे सादा फैन, सादा लोग थे, और शहीद बिश्ती के बारे में शकूक को शुबात के शिकार होते थे। एक मरतबा शहीद बिश्ती इमाम खुमैनी से मिलने आए, इमाम खुमैनी बैठे हुए थे बाहर, जो है वो लोग इमाम का इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम है, आपने वो वीडियोस देखी नहीं है, आज भी रहबर का जैसे लोग इंतजार करते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। शहीद बिश्ती का थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा इमाम खुमैनी ने देखा, पूछा बिश्ती क्या बात है? तो शहीद बिश्ती ने जिक्र किया दर्द दिल किया, इस तरह से तोहमतें भी लगती हैं, इल्जाम भी लगता है, हवन का भी इल्जाम लगता है फलां। शहीद बिश्ती से इमाम खुमैनी ने कहा, बिश्ती तुम्हें तो मालूम है तुम क्या कर रहे हो? कहा, मुझे तो मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। इमाम खुमैनी ने कहा, अच्छा सुनो, बाहर जो लोग नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लग रहे हैं? नारे लग रहे थे जिंदाबाद खुमैनी, जिंदाबाद खुमैनी, दुरूद पर खुमैनी। इमाम खुमैनी ने शहीद बिश्ती से कहा, बिश्ती बखुदा मैंने कसम खाई, बखुदा अगर ये सारे लोग अभी इसी लम्हे पलट जाएं और नारा लगाना शुरू कर दे मर्ग पर खुमैनी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरे खुदा को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मकसद क्या है? वजीफे की अदायगी है। नतीजा क्या हुआ? इमाम खुमैनी ने रेजिस्टेंस दिखाई, लोगों ने भी जब देखा कि मुसव्वी खुमैनी आए बोल रहे हैं, मिंबर पे आ रहे हैं, बयान कर रहे हैं, नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे अपराध शामिल हुए। उसका नतीजा ये निकला कि जो कानून जो बनाया गया था कि मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई थी और कुरान करीम के ऊपर से हलफ लेने की शर्त हटा दी गई थी, इस चीज को वापस लाया गया, पार्लियामेंट के जरिए से दोबारा इस चीज को तस्वीर करवाया गया। ये इमाम खुमैनी की पहली सियासी कामयाबी समझा जा सकता है। इसको दुरूद भेजो मोहम्मद वाले। उसके बाद और चीजें इसमें शामिल होना शुरू हुई, जरी इस्लाहात की बहस है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। 1963 के उम्र में आ जाता हूँ। 1963 के अंदर एक वाकया हुआ फैजी के अंदर, जब मैं करवाना चाह शाह ने जरी इस्लाहात के जरिए, उसमें भी अमेरिका की बालादस्ती थी, अमेरिका को ईरान के उसके अंदर कवानीन के अंदर बहुत ज्यादा हिस्से देने की बात थी, तो यहाँ भी इमाम खुमैनी ने मुखालिफत की। नतीजे में शाह ने रेफरेंडम का बहाना बनाया कि हम रेफरेंडम करवाते हैं, हम सफेद इनकलाब चाहते हैं, इनकलाब सफेद के नाम से, जैसे आज के दौर में मखमली इनकलाब का नाम आपने सुना हुआ होगा। उस जमाने में भी रेफरेंडम करवाने की बात की गई, इमाम हमें नहीं जानते थे कि रेफरेंडम के जरिए दरहकीकत इमाम ने ऐलान किया कि रेफरेंडम में पब्लिक शिरकत ना करे, नतीजे में लोगों ने शिरकत नहीं की और वो रेफरेंडम भी नाकामी से दोचार हुआ। लेकिन प्रोपेगेंडा करने के जरिए से और मीडिया के जरिए से इस बात को कहा गया कि रेफरेंडम हुआ है और लोगों ने राय दी है। लेकिन शाह को यहाँ से समझ में आ गया कि इमाम खुमैनी उसकी हुकूमत के लिए, अमरीका को समझ में आ गया उसकी इस्तकबालियत के लिए खतरनाक तरीन इंसान है। नतीजे में ये तय किया गया कि आहिस्ता 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 इनको समेटा जाए। 1963 के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ मदरसा फैजिया ईरान के अंदर, आप में सफरा जा चुके हैं, आज भी उन्होंने देखा होगा वो हरम में हज़रत मासूमा के साथ एक मुतसिल एक मदरसा है जिसको मदरसा फैजिया कहते हैं। उस जमाने में इस मदरसे की बहुत ज़्यादा शोहरत थी, आज भी शोहरत है और तोला वहाँ पे तालीम हासिल किया करते थे। इस फैजिया के अंदर हुआ ये कि जब रेफरेंडम का नतीजा निकला और उलमा की मुखालिफत की वजह से अक्सरियत लोगों ने बायकॉट किया रेफरेंडम का, तो यहाँ से फिर तय किया, जैसे मैंने पहले बयान किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता उलमा के किरदार को कम किया जाए, रोब दहशत का सिलसिला कायम किया जाए और बड़े उलमा को पकड़ के जेलों में डाला जाए। फैजिया के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में उस जमाने की जो शाह की इंटेलिजेंस फोर्स थी सावाक उसने हमला किया, हमला करने के नतीजे में बाकायदा लोगों को तालिब इल्मों को मारा उन्होंने। बयान किया जाता है तारीख इंकलाब में बातें लिखी हुई हैं कि इस कदर जुल्म दहशत के साथ मुबारिद हुए थे मदरसा फैजिया में और इस कदर उन्होंने बरबरीत का मुजाहरा किया था कि लोगों ने पहली पहली मंजिल से छलांग लगाने को तरजीह दी थी बनस्बत इसके के सवाल के हाथ में आए और वो उनके सामने टॉर्चर का शिकार बने। कई लोग इसमें कई तालिब इल्म इस वाकये में शहीद हो गए। इस वाकये के कुछ अरसे बाद ही, कुछ महीनों ही की बात है, इमाम खुमैनी ने फैसला किया कि अब बिल्कुल खुल के काम करना है। लिहाजा जब आशूर का दिन आया इस वाकये के बाद, ये भी 1963 की बात है और ज़ायरान शोहदाए फैजिया का चेहलुक था, उस आशूर की जो गुफ्तगू है वो टर्निंग पॉइंट है इंकलाब के लिए। और वहां से इमाम खुमैनी ने बाकायदा ऐलान करना शुरू किया कि ये शाह और उसके पीछे इसराइल। ज़ाहिरन जो मैंने पढ़ा है किताब के अंदर, ये पहली जगह थी कि जहां इमाम खुमैनी ने इसराइल को बेनकाब किया। उससे पहले ज़ाहिरन इतना खुल के बात नहीं होती थी, जो कुछ भी होता था वो अफ्रीका या शाह के हवाले से बयान होता था। ये पहली जगह है ज़ाहिरन 1963 में जब फैजिया के शोहदा का चेहरा था, आशूर का दिन था, इमाम खुमैनी ने वहां तकरीर की और उसके बाद लोगों को बेदार करने की कोशिश की और इसराइल के खिलाफ आगाही देना शुरू की। ये वो जगह थी कि जहां से दोबारा शाह की हुकूमत बहुत ज्यादा हसास हुई और इमाम खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इमाम खुमैनी को तेहरान में जेल में डाल दिया गया। उसके बाद शाह की तरफ से और उसके सावाक की तरफ से ऐलान किया गया कि जो कोई भी मेंबर पे, चूंकि मुहर्रम का दिन, मुहर्रम के अय्याम थे, जो कोई भी मुहर्रम के लिए मेंबर पे जाएगा, आजादारी के लिए मेंबर पे जाएगा, तीन चीजों का पाबंद होगा कि वह तीन चीजों पर बात नहीं करे। पहली चीज, शहनशाहियत के खिलाफ बात नहीं करेगा, जो भी शहनशाहियत के खिलाफ बात करता हुआ पाया गया उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। दूसरी चीज, इसराइल के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, इसराइल का नाम नहीं लिया जाएगा, मेंबर में बैठे कोई इसराइल के बारे में बात नहीं करेगा। और तीसरी शर्त शाह और उसके सवाल की तरफ से ये थी कि उलमा इस्लाम इस बात को बयान ना करें कि इस्लाम को कोई खतरा है। खबरदार, अगर किसी ने कहा कि इस्लाम को कोई खतरा है, जिस किसी ने भी ये बात की कि इस्लाम को खतरा है, चूंकि इमाम खुमैनी ने अपनी उस तकरीर में इस बात को बरमला कहा था कि मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इस्लाम खतरे की हालत में है, इस वक्त इस्लाम का वजूद खतरे में पड़ गया है, शाह जिस रविश पे जा रहा है, इसराइल उसके पीछे, एक मुफसल तकरीर है। तीन नुकात दिए गए तमाम उलमा को, तमाम अफराद को, खुतबा को, ज़ाकिरीन को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम खुमैनी की क़यादत, इमाम खुमैनी की अपनी शुजात और उसके नतीजे में उनके जो शागिर्द बने शुजात ने काम किया और ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। नतीजे में लोगों ने इमाम खुमैनी की हिमायत में निकलना शुरू किया, इमाम खुमैनी के बारे में मजालिस में गुफ्तगू होना शुरू हुई, शाह के खिलाफ बातें होना शुरू हुई, लोगों का प्रेशर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि तेहरान के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ 1964 के आगाज में और लोग रोड पे आके बैठ गए। जो धरना आप दे रहे हैं कि धरना वहां से चल रहा है, लोगों ने धरना देना शुरू किया, बल्कि उससे पहले की तारीख मैंने लिखा भी था, 1905 में धरना हुआ था ईरान में, इस्मान सुलेमान ने आके किया था। उसके बाद लोग बैठ गए और उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि हम दो चीजों में से एक चीज लेने आए हैं, मर्ग या खुमैनी, मौत या खुमैनी, या हमें यहाँ मार दो या हमें खुमैनी को दे दो, इसके बगैर हम जाने वाले नहीं है। और उन्होंने साबित किया, सख्ती हुई, इंतहाई सख्ती हुई, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बैठे नतीजे में इमाम खुमैनी की आजादी के ऑर्डर जारी किए गए और इमाम खुमैनी को 1964 में आजाद किया गया। दूर भेजे मोहम्मद अली मोहम्मद। यहाँ तक के नतीजे में ये हुआ कि अब शाह के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ी, कई फायदे इस चीज के हासिल हुए, शाह के खिलाफ नफरत बढ़ गई। दूसरा फायदा ये हुआ कि रूहानियत या उलमा बाकायदा अमली मैदान में आ गए, लोगों की क़यादत सियासी लोगों के हाथों से निकलकर उलमा के हाथ में, वो अफराद वो उलमा के जो समझते थे, चीजों को समझते थे, समझ बूझ रखते थे, यानी साहब इरफान ने जिनकी इमामों में तरबियत की थी हर एतबार से। दूसरा फायदा ये हुआ, पहला शाह के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ, दूसरा ये हुआ कि रूहानियत मैदान में ही, और तीसरा फायदा ये हुआ कि इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन होना शुरू हो गया, लोगों के दरमियान इत्तेहाद आना शुरू हो गया। उस इत्तेहाद के नतीजे में ही ये समरात निकलना शुरू हुए। इमाम अभी आजाद हुए थे कि 1964 में शाह ने दोबारा एक और कानून अमरीका के कहने पर वजह किया। वो कानून किया था, उस कानून के इमाम ने ईरान की हुकूमत और लोगों के लिए जिल्लत और नंगो आर का कानून करार दिया। वो कानून ये था कि अगर ईरान के अंदर कोई अमरीकी फौजी या अमरीकी मिशनरी से वाबस्ता फर्द, सिफारत का कोई फर्द अगर किसी मुज्तहिद को भी मार देगा, ये ज़ाहिरन बाकायदा अल्फाज थे, या हमने इस तरह से सुना हुआ पढ़ा हुआ है कि अगर किसी आला रुतबे के शख्स को, चाहे वो मुज्तहिद ही क्यों ना हो, उसको मार देगा तो उस शख्स के ऊपर मुकदमा ईरान में नहीं चल सकता, उस शख्स के ऊपर मुकदमा ईरान में नहीं चलेगा, उस शख्स को ईरानी फोर्स गिरफ्तार करने का हक नहीं रखती। किस शख्स को? कि जो ईरान के किसी भी इंसान को, चाहे आला तरीन रुतबे के इंसान को क्यों ना मार दे, उसमें आला तरीन रुतबे की कैटेगरी बयान की गई है, मुश्तहिद भी चाहे क्यों ना हो, वो भी मार दिया जाएगा, तो किसी को ईरान के अंदर ये अख्तियार हासिल नहीं है कि उस शख्स को पकड़े और जेल में डाले। इस शख्स को अमरीका अपने यहाँ लेके जाएगा, वहां इसका मुकदमा चलेगा, जो भी कुछ करना होगा वहां किया जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई शख्स किसी भी अमरीकी या उसके अमरीका से मुतालिक अफराद, चाहे वो फौजी हो या सियासी लोग हों या सिफारत के लोग हों, उनके खिलाफ कोई इकदाम करता है या उसके नुकसान का सबब बनता है या उसको मारने का सबब बनता है, इस शख्स को अमरीका अपने यहाँ ले जाएगा और वहाँ इसका मुकदमा चलाएगा। इस चीज को शाह ने कबूल किया। इमाम खुमैनी ने कहा कि ये कौम की मौत है, ये कौम की जिल्लत की इंतहा है कि जब तुम्हारे ऊपर इस कदर जुल्म और बर्बरियत के बाद तुम्हारे ऊपर ये जो है वो जिल्लत दारी कर दी जा रही है कि तुम्हारी कौम का आखिरी फर्द भी उनके कौम के छोटे से छोटे फर्द से भी छोटा हो गया, यानी अगर उनके यहाँ का सिफारतकार, सिफारत का बावर्ची भी कोई मार देगा, उस बावर्ची का मुकदमा लड़ने के लिए उस शख्स को, चाहे वो किसी भी मरतबे पर ईरान में होगा, अमरीका ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। उसको इख्तियार है कि तुम्हारे अफराद के हाथों में हथकड़ी डाल दे, तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को भी मार के चला जाए, तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो। थोड़ी बहुत चीजें शायद पाकिस्तान में भी हो रही है, रैमन डेविस का मामला कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल में, सोच लीजिएगा इस पर आप लोग। वो बहुत सारी मुशाबियतें हैं जो पाई जाती हैं, उसको हमें आपको देखना चाहिए। इमाम खुमैनी ने इसके खिलाफ दोबारा तहरीक का आगाज किया, और उसके बाद इमाम खुमैनी की जब तहरीक का आगाज हुआ, यहाँ से फिर दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। इमाम खुमैनी को गिरफ्तार किया गया, और इस मरतबा गिरफ्तार करके शाह ने इमाम खुमैनी को ईरान में नहीं रखा बल्कि इराक जला वतन कर दिया। उसने सोचा कि अगर ये शख्स यहाँ रहेगा तो इसी तरह के मसाइल मेरे लिए क्रिएट करता रहेगा। नतीजे में उसने इमाम खुमैनी को इराक जिला वतन कर दिया। उसके बाद जब इमाम खुमैनी जिला वतन हो गए, फिर तहरीक थोड़ा सा जो है वो लफ्ज अच्छा नहीं, जमूत का शिकार होना नहीं कह सकता, मैं हरगिज भी नहीं कह सकता, थोड़ा सा सुस्ती का शिकार हुई। उसकी वजह यह कि जब आप काम करते हुए मैदान के दौरान किसी मेन लीडर को, शख्सियत को ले जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको बाद पीछे वाले रहने वाले कर रहे होते हैं सही। अब मैं दोबारा मिसाल दे दूँ कि पाकिस्तान में गैप 1988 से क्रिएट हुआ हुआ है शहीद हुसैन की शहादत के बाद, वो अभी बहुत अच्छी तरह भरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब कोई मरकजी ख्यालत चली जाती है तो बड़े नुकसान होते हैं। ईरान में कैसे हुआ, इमाम खुमैनी जब बाहर चले गए, नतीजे में थोड़ा सा तहरीक के अंदर सुस्ती आई, लेकिन चूंकि शहीद बेश्ती, मुतहरी, मुफद्दे, इस तरह के और बहुत से लोग थे कि जो मौजूद थे, अगर जिस सहाबा की जब पर थे, लेकिन इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। इमाम खुमैनी की कैसेट्स वहाँ से रिकॉर्ड होकर आते थे, ये लोग उसको लिखा करते थे, उसके बाद तकरीरों को फैलाया करते थे, करते करते इमाम खुमैनी की याद को मरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया, इमाम खुमैनी की शख्सियत को जिंदा रखा, वो बलबला बाकी रखा, और उसके बाद इंकलाब का रास्ता फराहम होता रहा।
1977
इमाम खुमैनी इराक में थे, वहां उनके बेटे को शहादत का दर्जा मिला, मुसवा खुमैनी को जहर देकर शहीद किया गया। और उसके बारे में आप जानते हैं कि इमाम खुमैनी ने कहा था कि मुस्तफा खुमैनी की शहादत खुदा के खुफिया नेमतों में से एक नेमत है, या खुदा के खुफिया हदियों में से एक हदिया है मेरे लिए। नहीं मालूम इमाम खुमैनी ने किस निगाह हदिया करार दिया, वो वही जानते हैं, खुदा जानता है, या जो अफराद इसके अहल हैं वो उसकी तशरीह कर सकते होंगे। बहरहाल इमाम खुमैनी की शहादत के बाद जो है वो लोगों में शाह के खिलाफ नफरत और बढ़ी, और उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि शिद्दत आना शुरू हो गई। और मैं बिल्कुल मुख्तसर करते हुए एंड पे आ जाऊं, क्योंकि इरफान भाई ने इसके बाद गुफ्तगू करनी है। उसके बाद 2 सितंबर 1977 को ये हुआ कि तहरीकें चली रही थी, तेहरान के साथ साथ अब 11 मजीद शहर इस तहरीक के अंदर शामिल हो गए, जिसके अंदर तबरेज एक बहुत बड़ा शहर था, वहां पर एक बहुत बड़ी तहरीक उठी, आज़रबैजान का इलाका है, वहां पर बहुत बड़ी तहरीक उठी। करते करते ईरान के 11 इलाकों में तहरीकें चलना शुरू हो गई, और मुसलहाना तहरीकें थी, अब बाकायदा स्ट्रीट फाइट्स होना शुरू हो गई, इनकलाबियों ने जो है हाथों में असला उठाना शुरू कर दिया और मुसलहाना तहरीक शुरू हो गई। करते करते 29 नवंबर 1977 को यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के सामने स्टूडेंट्स ने इमाम खुमैनी की हिमायत में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, शाह की तरफ से गोलियां चलाई गई और बहुत बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की उस कार्रवाई के अंदर मारी गई। नवंबर 1977 में मार्शल लॉ का जो है वो इतलाक कर दिया गया। अब मार्शल लॉ का जब इतलाक किया गया, मैं अपनी गुफ्तगु को बस इसी में खत्म कर देता हूँ। मार्शल लॉ का जब इतलाक किया गया तो आपको मालूम है, आपने शायद सुना होगा, जिन दोस्तों ने नहीं सुना उनके लिए बयान कर रहा हूँ, हुकूमत का ऐलान आ गया कि जो शख्स भी बाहर निकलेगा उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। जब यह ऐलान हुआ तो लोग अपने घरों में बैठ गए। इमाम खुमैनी की तरफ से पैगाम आया कि आज की रात, यानी जिस रात ऐलान हुआ है कि ये मार्शल लॉ लग रहा है, इमाम खुमैनी की तरफ से एक पैगाम आया, हुक्म आया कि आज की रात घर में बैठना हराम है। ये पैगाम आया, फैला लोगों के दरमियान। बड़े बड़े उलमा इमाम खुमैनी के इस पैगाम से थोड़ा सा परेशान हुए, हत्ता एक शख्सियत आयतुल्लाह तालिबानी की है, एक अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छी उनकी शख्सियत है इंकलाब के हवाले से, इमाम खुमैनी ने उनको अबू ज़र का लकब दिया है। अपने दौर में आयतुल्लाह तालिबानी को इमाम खुमैनी अबू ज़र कहते थे, अबू ज़र ज़मान है, यानी सच्चाई, इंतहाई सच्चे इंसान थे, बहुत ही एक अच्छी शख्सियत थी। बयान किया जाता है कि आयतुल्लाह तालिबानी ने इमाम खुमैनी को पैगाम दिया, कहा कि रूहुल्लाह, मामला सीरियस है, इमाम खुमैनी सब रूहुल्लाह कहा करते थे, रूह असल में उनका नाम भी रूहुल्लाह है, क्या रूहुल्लाह मामला सीरियस है, शाह ने और फौज ने हुकूमत का ऐलान कर दिया है, फौजी हुकूमत का ऐलान कर दिया है, बयान किया गया कि जो निकलेगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। आप जरा तजदीद नजर कीजिए, आपने हुक्म दे दिया कि जो भी घर में बैठेगा आराम है आज के दिन, जो भी निकल सकता हो बाहर निकले आज की रात। जब उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की तो बयान किया जाता है कि इमाम खुमैनी ने जुमला आगे से कहा, उसके बाद आयतुल्लाह तालिबानी बिल्कुल खामोश हो गए, उन्होंने फोन रख दिया। इमाम खुमैनी ने कहा कि ऐ तालिबानी, अगर ये मेरा हुक्म ना हो तो आप क्या करेंगे, इसके बाद वजाहत नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी गई इसके बाद वजाहत क्या है, किसी किताब में नहीं पढ़ी, किसी आलिम से ईरान में भी नहीं सुनी कि इसके बाद कोई बात हुई है क्या हुआ। इमाम खुमैनी से तालिबानी साहब ने कुछ पूछा कि अच्छा भाई फिर किसका हुक्म है, कुछ नहीं, क्योंकि इमाम खुमैनी की शख्सियत पहचानी हुई शख्सियत है, इमाम खुमैनी को सब जानते हैं। उन्होंने कहा आयतुल्लाह तालिबानी, अगर मेरा हुक्म ना हो तो आप क्या कहेंगे, बस इतना इशारा काफी था। आयतुल्लाह तालिबानी ने फोन रखा, कहा भाई निकलना है। वो रात ऐसी रात थी कि उसमें लोग निकले हैं और हजारों की तादाद में लोग तेहरान में मैदान शहदा के नाम से आज उसको याद किया जाता है, उस जमाने में मैदान जाले के नाम से उसको याद किया जाता था, हजारों की तादाद में वहां पे लोग शहीद हुए, टैंकों के जरिए कुचला गया, गोलियां चलाई गई, लेकिन लोग बाकी रहे, बैठे रहे। और उसके बाद वही चीज बाइस बनी कि शाह को जब ये रेजिस्टेंस नजर आई तो अब उसको ईरान से निकलने में अपनी आफियत नजर आई, और उसके बाद शाह ने ईरान से फरार इख्तियार किया। 31 जनवरी 1979 को इमाम खुमैनी 14 साल जलावतनी काट कर वापस ईरान में आए, और उसके बाद इनकलाबी हुकूमत को इमाम खुमैनी ने बाइन किया। ये मुख्तसर सी तारीख थी, बहुत तेजी से अगर लहजे में थोड़ी सी गलती हो या तेजी की वजह से समझ में आया तो यकीन दोस्तों से माजरा चाहता हूँ। दुरुद भेजे मोहम्मद।